देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। भारत की रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस पर भी आप सबको बधाई हो। रिपब्लिक डे इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंडिपेंडेंस होना अलग चीज है और अपने देश को एक सिविलाइज्ड वे में चलाना ये डिफरेंट है। दुनिया में बहुत सारे देश वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ करके डेमोक्रेसी को अपनाते हुए भी सफल नहीं हो पाते और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत, तब हमारी लिटरेसी रेट कोई ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 10-11% लिटरेट लोग होंगे। जब हम लिटरेट कहते हैं इस 7th-8th grade तक के पढ़े हुए लोग सिर्फ 10-11% थे। दुनिया में ज्यादातर वेस्टर्न फिलोसोफर्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत में डेमोक्रेसी टिक नहीं सकती, गरीब देश है, अनपढ़ देश है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं। पर उनके लिए मिरेकल था कि हम बहुत स्ट्रांगली डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को लेकर आगे बढ़े। उनके लिए मिरेकल हो सकता है पर किसी भी भारतवासी के लिए वो कोई मिरेकल नहीं था, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन वेदों से लेकर अंतिम तक, इवन बीच में राजा महाराजाओं के होने के बावजूद भी वो ट्रेडिशन रहा है कि मिलजुल करके काम करना और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के। ऑल्दो हमारे रिलीजियंस अलग अलग हैं देश में, लैंग्वेजेस अलग हैं, खान पान अलग है, कल्चर्स अलग हैं, सोच समझ अलग हैं, बिल्कुल एक कंटिनेंट के तरह, एक कंटिनेंट में भी कुछ समानताएं मिलेंगी, भारत के अलग अलग स्टेट्स में इतनी सारी विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी जो एक अंडर करेंट हर किसी के अंदर रहता है वो जो इंडियननेस है, वो बड़े कमाल की बात है। आज के दिन पर एक वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, यह अथर्ववेद का मंत्र है, या राष्ट्र या नेशन कैसे बनता है और कैसे चलता है, ये बड़ा सुंदर मंत्र है। वो कहता है भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वर्विदस्तपो दीक्षा उपनीषे दुरुग्रे ततो राष्ट्रम बलमजश्च जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तो। यदि शुरू में ऋषियों ने, ऋषि कहते हैं द सीयर्स ऑफ ट्रूथ, जो सत्य की खोज करते हैं, दोज हु आर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ऐसे जो ऋषि हैं उन्होंने शुरू में जो तपस्याएं की, हार्ड वर्क किया, अपने आप को कष्ट सहा कि ऐसे एक नेशन बने। नेशन का मतलब जहां लोग एक तरह के लोग मिलजुल के रहें, इस सिस्टम को फॉलो करें, खुशी से बढ़े। और उस लाइट को ढूंढने वाले, राष्ट्र की कल्पना करने वाले ऋषियों ने तपस्या करके जो उनमें से निकाला अपने हार्ड वर्क से, वो था एक तो राष्ट्र नेशन, बल जो स्ट्रेंथ एंड वो जो द विगौर, ये तीन चीजों को जन्म दिया। और जो उसका हेड बना, पहले उसको राजा कहते थे, आप प्रेसिडेंट कहते हो, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हो, कोई भी चांसलर कहते हो, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हेड बना, उन राजाओं को या उस हेड ऑफ द नेशन को इस आशीर्वाद के साथ बढ़ाया कि तुम्हें वो हर तरह के सुख मिले, बल और तेज से भरे रहो और तुम इस पर राज करो। इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें है कि कोई भी राष्ट्र तीन चीजों से टिकता है। पहला तो वहां के लोगों की जो हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, नेचुरली दुनिया में कोई भी देश हो, जो भी डेवलप्ड हैं, प्रॉस्परस हैं, धनी हैं, जहां हर कोई जाना चाहता है इंक्लूडिंग यूएसए, वहां की दो तीन चीजें देखेंगे, वो देश अपने आप तो नहीं बना, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क वहां कॉमन लोगों के अंदर भरना जरूरी है। नंबर टू, आपके अंदर वो नेशन या देश के प्रति भाव होना चाहिए, जैसे हमारा प्रेम अपने बच्चों के लिए होता है, अपने पति पत्नी के लिए होता है, मां बाप के लिए होता है, ईश्वर के लिए होता है, वही भाव, वही प्रेम भाव आप उस ज्योग्राफिकल वो जो पीस ऑफ लैंड के लिए होना चाहिए। ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जो बहुत प्रॉस्परस है, रिच है, पर वहां के लोगों में वो नेशनलिज्म की सोच नहीं है। वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मैं नए देशों के नाम लेता हूं, ब्रिटेन हो। और दूसरी चीज, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, आपके अंदर स्ट्रेंथ इतना पैदा करें कि आप किसी से लड़े ना लड़े, कोई दूसरा आपसे लड़ने के लिए हिम्मत ना करे। शांति तभी होती है जब आपके अंदर ताकत होता है। कमजोर आदमी को कहां शांति होगी, वो तो 24 घंटे डर के मारे जीता रहेगा, पता नहीं कौन कल की मेरे ऊपर कोई चढ़ जाए। मैं कितना भी शांत रहना चाहूं, अगर मैं कमजोर हूं, इसलिए महात्मा गांधी कहा करते थे कि अहिंसा कमजोर लोगों का काम नहीं है, ये तो पावरफुल लोगों का काम है, जिनमें स्ट्रेंथ हो, एबिलिटी हो, स्ट्रांग हो, वही अहिंसा फॉलो कर। कमजोर आदमी तो डरा हुआ होता है, और डरा हुआ आदमी बड़ा खतरनाक होता है, किसी को भी कभी मार सकता है क्योंकि डरा हुआ है। इसलिए जो सेकेंड थिंग है कि हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ हम पैदा करें, और हमारे लोगों के अंदर, जैसे अभी अभी हवन के मंत्रों में आप सुन रहे थे कि हमारे ब्राह्मण विद्वान लोग को ज्ञान से भरे हो, क्षत्रिय शक्ति से भरे हो, वैश्य धन और संपत्ति से भरे हो, शूद्र सेवाभाव से भरे हो, स्त्रियां इंटेलिजेंट और बोल्ड हो, हमारे पशु पक्षी इस तरह के हो, ये जो स्वप्न है कि कैसा हमारा देश हो, तो हमारे लोगों में वो तेज, जिस देश के लोगों में जितना ज्यादा तेज वो एनर्जी, वो एबिलिटी दिखे, वो देश उतना आगे बढ़ता है। तो हम आशा करते हैं कि ये 70-72 साल की इंडिपेंडेंट भारत में, लोगों में, समाज में इस तरह के परिवर्तन हम देख रहे हैं। सिर्फ 70-72 साल के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाए, किसी तरह की गवर्नमेंट आए, जिस तरह का भारत में चेंजेस हम देखते हैं, रैपिडली चेंजेस देखते हैं, अच्छे दृष्टि से हर तरह से डेवलपमेंट हो रहा है लोगों के सोच में, देश में, हर तरह की चीजों में। आशा करते हैं कि 100 साल में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होगी, जिसके लिए जो भारत से जुड़े हुए लोग हैं, अंदर रहें बाहर रहें, वो प्राउड फील कर सकते हैं। तो इसी भाव के साथ इस रिपब्लिक डे ऑफ भारत में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जिस स्ट्रेंथ और एबिलिटी के साथ भारत में डेमोक्रेसी चलती है, वो हम सबके लिए, हम सबको उसमें गर्व का अनुभव करना चाहिए। इसी के साथ आज का जो विषय है, ईशोपनिषद की चर्चा हम कर रहे थे, आज 9वां मंत्र है, आप मेरे साथ मिलकर के बोलिएगा। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमोय उ विद्यायामृतः। देवियों सज्जनों, ये बड़े मजेदार मंत्र है और काफी चोट करने वाला मंत्र है। चोट समझते हैं, हीट करने वाला मंत्र है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह के परसेप्शन हमारा है, समझ है, उसे बिल्कुल उल्टी बात करता है। ये मैंने कह रहा हूं, ये कहता है दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या, जो अज्ञानी होते हैं ना, वो अंधेरे में गिरते हैं। आप कहेंगे तो सबको पता है भाई, जो इग्नोरेंट है वो अंधेरे में गिरता है। अंधेरे में गिरता मतलब लाइफ में बहुत सारे मिजरीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, आसान रास्ता नहीं है इग्नोरेंट व्यक्ति के लिए, पर ये तो आपको पता है। जो पता नहीं वो ये बोलता है नेक्स्ट कि दोज हु आर एनग्रॉस्ड इन विद्या नॉलेज एंटर द ग्रेटर बाइंडिंग डार्कनेस। जो बहुत ज्यादा जो नॉलेज, केवल नॉलेज में फंसे पड़े हैं, वो तो उससे गहरे अंधेरे में भी गिरते हैं। अब ये आपको चोट करने वाली बात है, ये सीधे दिल को चुभता है। पढ़े लिखे होकर आपके तो हम अंधेरे में गिरेंगे, मैंने कहता हूं, इसलिए आप मुझे ब्लेम भी नहीं कर सकते हो। ये तो वेद कहता है, ईशावास्य उपनिषद कहता है, बस इतना कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता तो दो चार लोग हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं, हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस, हम सब पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, नहीं तो उतरने के बाद मेरी ही खटिया खड़ी कर देते। तो बात उपनिषद की है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो सिवाय समझने की। समझना यह है कि इग्नोरेंस जो होता है वो नेचुरली लोगों को मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में, जो भी अनपढ़ है, इलिटरेट है, इग्नोरेंस है, जिन चीजों के बारे में आपको पता नहीं, नेचुरली हम डार्कनेस में, अंधेरे में होते हैं। अंधेरे में होने का मतलब हमें पता नहीं होता है कहां जाना, क्या करना, चीजें होने पर भी हम यूज नहीं कर पाते हैं, सफर करते हैं। पर ज्ञान होना, ध्यान दीजिए, शब्द है एनग्रॉस्ड, जो बिल्कुल ज्ञान के ही पीछे पड़े रहते हैं, उनको और कुछ करना धरना नहीं, इंप्लीमेंटेशन कम है, वो ज्ञान ईगो पैदा करता है। जब जिस दिन मुझे ये समझ में आने लगता है कि मैं कोई चीज जानता हूं, तो मेरा जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। और जब आपकी को कुछ और सीखना समझने की इच्छा खत्म हो जाती है तो आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाता है। इग्नोरेंस का मतलब है कि मैं जानता हूं कि मुझे पता नहीं है, सो द डोर इज ओपन। वो वैसे ही है जैसे आप थ्रेशोल्ड पर खड़े हो, दरवाजे पर, आपके पास दो रास्ता है, या तो आप अंधेरे में आओ, घर के अंदर आओ जहां लाइट नहीं है, आप चाहो तो बाहर भी जा सकते हो ना, बाहर तो सनलाइट है। अज्ञानी के पास हमेशा दो चॉइस रहता है, वो ज्ञान पा करके, नॉलेज लेकर के अपने इग्नोरेंस को दूर कर सकता है, या इग्नोरेंट हमेशा रह सकता है। देयर इज टू ऑप्शंस। और जो मान बैठा कि मैं जानता हूं किसी भी सब्जेक्ट में, मुझे जानने की जरूरत नहीं है अब, उसके लिए सारे दरवाजे बंद है, एक ही ऑप्शन है कि वो अंदर जाएगा ही जाएगा, बाहर नहीं जाना। यही फर्क है इग्नोरेंस और नॉलेज की समझ में। वैसे ये मंत्र एक और चीजों की ओर इशारा करता है, वो हम अगले संडे चर्चा करेंगे, पर आज की चर्चा का विषय यही है कि अज्ञान से ज्ञान का अहंकार ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा दुख में डालने वाला होता है। जनरली रियलिटी में देखा जाता है जो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं उनके अंदर हमेशा ये सेंस रहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, क्योंकि ज्ञान इतना अनलिमिटेड है, इतना इन्फिनिट है, सागर है। आप समुन्द्र में कितने भी डुबकी लगाओ, आपको लगेगा कि मैं समुन्द्र के बहुत छोटे से हिस्से को ही जान पाता हूं, तो बहुत छोटा आदमी हूं। पर अगर आप कभी समुन्द्र गए ही नहीं, डुबकी लगाया ही नहीं है, क्लासरूम में बैठ के सागर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो सब पढ़ा है, मेजरमेंट पढ़ा है, तो आप दावा करेंगे कि मैं समुन्द्र को सारा जानता हूं। पर समुन्द्र में डुबकी लगाने वाला कभी नहीं दावा कर सकता तैरने वाला। कोई भी बड़े से बड़े मछली अगर जान हो और बोल सकता तो नहीं दावा कर सकता मैं समुन्द्र को जानता हूं, क्योंकि उसको पता है समुन्द्र कितनी बड़ी है, कितना बड़ा है, और वो मुश्किल से कितने जगह घेर सकता है। अरे ऐसा देखा जाता है इन रियलिटी में भी, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्यादा हम्बल होते हैं, ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, और उनमें हमेशा डोर्स खुला रहता है। कोई कुछ बताता है, कितने भी ऐसी बातें बताएं जो पहले कभी सुनी ना हो, जानी ना हो, बहुत अपोनेंट चीजें हो, तो भी वो सुनता है, समझने की कोशिश करता है। सुनते ही डिनाय के मूड में, डिनायल मूड में नहीं आ जाता है। पर जिनको ज्ञान कम है या थोड़ा सा है और मान बैठे हैं कि मैं सबको जानता हूं, और बाय द वे मैं चलते चलते बोलो, ज्यादातर हिंदू लोग अपने धर्मशास्त्र के बारे में यही ख्याल यही भाव रखते हैं, मतलब दे आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर ओन रिलीजियन। जानते भी हैं, टीवी शो से महाभारत जानते हैं, टीवी सीरियल से महाभारत रामायण जानते हैं, और इधर उधर यूट्यूब गूगल से धर्म के बारे में जानते हैं, एंड उनके लिए डोर्स आर क्लोज्ड, वी नो एनफ। ये चलते चलते ये इंफॉर्मेशन है। और जिसका ज्ञान कम या बिल्कुल नहीं है, वो जनरली समझता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। वो संस्कृत में बड़ा सुंदर नीति श्लोक है, यदा किंचित ज्ञोहम द्वीपैव मदांध समभवम्, यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मित्यभवदबलीनम मम मनः। जब मैंने कभी थोड़ा सा जाना किसी चीज के बारे में, तो मुझे मैं उस मतवाले हाथी की तरह हुआ, कोई रोड्स फॉलो करना नहीं, रूल्स फॉलो करना नहीं, जहां मर्जी वहां अपने आप को अकड़ने लगा, सब जानता हूं। और जैसे ही मैं किसी बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ बैठना उठना शुरू किया, तो पता चला मेरे से मूर्ख तौर कोई हो भी नहीं सकता। ज्ञान होना, जो ज्ञान होने पर जो सबसे बड़ा फीलिंग अंदर आती है कि मैं कितना काम जानता हूं। आप किसी भी फील्ड में, साइंस में हैं, आर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, मेडिकल साइंस में हैं, कंप्यूटर्स में हैं, फिजिक्स में हैं, आप देखो कैसे कैसे अलग अलग डायमेंशन खुलते। आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेकर चलो, अब कंप्यूटर साइंस नया है, मुश्किल से 30-40 साल की उसकी हिस्ट्री है। आज के डेट में कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट दावा करेगा कि मैं सब जानता हूं? इतने सारे उसके डायमेंशन है, कोई सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट है तो कोई हार्डवेयर का एक्सपर्ट है, कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपर्ट है, किसी कोई साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है। पर आप सारे चीजें जाने नहीं, लाइफ बड़ा छोटा है, दुनिया में ज्ञान अनंत है। इसीलिए कहा कि जो इग्नोरेंट है और जिसको पता है कि मुझे नहीं पता, वो अंधेरे में भी गिर सकता है, नो डाउट, पर उसके पास एक ऑप्शन है कि वो लाइट में भी जा सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे नहीं पता। पर जिसको ये पता है कि मैं जानता हूं, वो लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सारे दरवाजे क्लोज हैं। सो इफ यू विश टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ लाइट, ऑफ विजडम, यू मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ योर इग्नोरेंस। तो इसीलिए ये जरूरी है, इवन हमारे डे टू डे लाइफ में, या हमारे आजकल छोटे बच्चों को भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अब वो खास करके छोटे बच्चे बड़े आसानी से सीखते हैं, और जैसे ही वो टीनेजर हो जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, उनके लिए माँ बाप सबसे दुनिया के बड़े मूर्ख होते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। टीचर्स को थोड़ा बहुत पता होता है, पर हमसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये टीनेज का सिम्टम होता है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ टीनेज का सिम्टम है। देखिए, इग्नोरेंस होना और नॉलेजेबल होने में क्या फर्क होता है, फर्क अगर बच्चे और बूढ़े को देखिए। ऐसा जो टीचिंग लाइन में रहने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं, लैंग्वेज हो, मैथ हो, या कोई नई चीज सीखना हो, बचपन में आसान होता है, ओल्ड एज में मुश्किल होता है। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए, जो ज्यादा एज का है, 40-50-60 साल का है, उसको जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि उसके पास मैच्योरिटी है बहुत, और दुनिया भर की नॉलेज उसके पास है, वो जल्दी फास्ट सीखना चाहिए। पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं दिखता। 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा जल्दी सीखता है इंस्टेड ऑफ कोई 40, 50, 60, 70 ईयर्स ओल्ड. रीजन क्या है? ओनली थिंग दैट इज ईगो. छोटे बच्चे को पता है कि मुझे नहीं पता, आप उसके कुछ भी सिखाओ वो सीखता है, हैप्पीली सीखता है. बड़े की प्रॉब्लम है कि उसको पता है कि मुझे सब पता है, ये मुझे क्या सिखाएगा, चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बता दो, बता दिया दैट्स इट. अगर गलती से टीचर ने पूछ लिया आपको कुछ समझ में आया, ये बड़ा इंसल्टिंग हो गया भाई यार, मैं इंजीनियर हूं, प्रोफेसर हूं, डॉक्टर हूं, ये हूं, कैसे पूछ ले तो. अब समझ में आया नहीं ये 100% श्योर है, पर आप पूछ नहीं सकते हो. वो मान नहीं सकता कि मुझे समझ में नहीं आया, वो मान नहीं सकता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम से, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं. पढ़ा लिखा आदमी कैसे मान ले कि मैं कोई चीज समझ नहीं पा रहा हूं? सिर्फ यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है कि एक सर्टन एज के बाद हम पढ़ने में वीक होते हैं. वो ओल्ड एज का प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता होगा मेमोरी का प्रॉब्लम होगा और कुछ ग्रास्पिंग पावर में कमी हैगी, नथिंग, ओनली द इश्यू इज ईगो. क्योंकि आपको लाखों करोड़ों ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जो 50 इयर्स ओल्ड में, 60 इयर्स, 70 इयर्स, 90 इयर्स भी लोग हैं. अभी एक यूएसए में भी था एक 90 इयर्स लेडी, उसने ग्रेजुएशन किया. मतलब कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो फिर ग्रेजुएशन कैसे कर लेती? बचपन में पढ़ने को टाइम नहीं मिला, जो भी हो उसने लास्ट टाइम में पढ़ा. ईगो इज द ओनली रीजन वी कैंट रीड और स्टडी इन ए पर्टिकुलर एज. तो जैसे ही आप लाखों करोड़ों लोगों को आपको पता चलेगा, ऐसे भी हैं जो बड़े एज में पढ़ाई शुरू की, कोई भी लैंग्वेज सीखना हो और कोई सीखना हो, और बड़े सक्सेसफुली पढ़ा. क्यों? जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर इग्नोरेंस है, आई नीड टू लर्न इट. टीचर कैसा भी हो, क्या भी हो, नहीं फर्क पड़ता, मुझे इस सब्जेक्ट में नहीं आता है तो आई हैव टू एडमिट इट एंड आई हैव टू बी एक्सेप्ट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट. जैसे ही आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है कि मेरे मुझे कुछ पता नहीं है, तो आपकी सीखने की स्पीड बढ़ने लगता है. दैट्स इट. हमारे यहां भी संस्कृत की क्लासेस चलती हैं, जब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैं उनको पहले ही ये कंडीशन 2-3 बताता हूं, उससे बहुत लोग नहीं आते हैं. तो पहला कंडीशन मैं कहता हूं, देखो आप बाकी क्लासेस में तो आइए, आप फ्री, आप जब मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं, बस क्योंकि लैंग्वेज क्लास है तो आपको बिल्कुल ये छोड़ना पड़ेगा कि आपको कुछ आता है. क्योंकि लोग आते हैं जी हमने 10 तक पढ़ा, 12 तक पढ़ा, वो मुझे डर लगता है जब कोई बोलता है कि मैं यहां तक पढ़ा हूं, मतलब कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पता. पर वो पढ़ा होने का जो उसके अंदर सेंस है वो टीचर को आगे बढ़ने नहीं देता है. नंबर 2, आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ही क्लास में होना पड़ेगा. मींस आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि यू नो नथिंग, नंबर 1. बीच में आप अननेसेसरी फिलोसॉफिकल और बाकी चीजें घुसे करके बातें नहीं करना. बिल्कुल आप कहेंगे जी आप मुझे वो वर्ड्स वोकैबुलरी सिखा रहे हो, ग्रामर सिखा रहे हो, ये थोड़ा बिलो माई वो रेपुटेशन हो जाता है ना. बच्चा थोड़ा ही पूछता है जब आपके तो आई गो वी गो, वो थोड़ा ही पूछता है गो का एटिमोलॉजी क्या होगी, क्यों होगा, ऐसे क्यों हुआ, किस लैंग्वेज से ही आया, थोड़ा ही पूछता है, कुछ नहीं पूछता. अपने गो आई के साथ गो लगता है तो गो लगता है, ही के साथ गोज लगता है तो गोज लगता है. ईगो सामने नहीं आता, इग्नोरेंस बिल्कुल एक्सेप्टेड है, तैयार है कि मुझे नहीं पता, माँ बाप जो सिखा रहे हैं वो सही सिखा, मैं सीखूं. इसीलिए देवियों सज्जनों ये बहुत जरूरी है, जिस भी मामले में आपको आगे बढ़ना है उस मामले में हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मुझे नहीं आता. जैसे ही आप देखेंगे ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि मुझे नहीं आता, आप देखेंगे फट से आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके डोर्स खुलने लगेंगे. So whenever you think I know, stop a while and reconsider your thought. Ask yourself, do I know it really? जैसे ही आपको पता चलेगा कि मैं सचमुच जानता है कि नहीं जानता हूं, तो फिर हमारे अपने आप होने लगेंगे। एक छोटी सी कहानी हमने सुनी थी, कह के बात खत्म करेंगे। एक चर्च में एक फादर स्पीच दे रहे थे, वो जैसे संडे सर्मन्स होते हैं, वो रीडिंग करके पढ़ रहे थे बाइबल को, और उस दिन वो चश्मा लाना भूल गए थे। वो चश्मा पहनते मेरे तरह, तो चश्मा नहीं पहने तो दिखता नहीं है, तो कुछ स्ट्रेस में आदमी होता है। तो उनको उस दिन बताना था जीसस के मिरेकल्स के बारे में। अब बता रहे थे जो फेमस स्टोरी है कि 4000 एक बार जीसस अपने 4000 फॉलोअर्स के साथ जंगल में गए, भूखे प्यासे थे, तो उनके पास 7 रोटी थी, 7 ब्रेड्स हैं, ब्रेड्स थे। अब उन्होंने 7 रोटियों को 4000 लोगों में बांट दिया, सबका पेट भर गया, तब भी रोटी बच गई, ये बोलना था। पर चश्मा नहीं था तो देख नहीं सकते, तो वो बोलते बोलते थोड़ा स्ट्रेस में थी, वो बोल बैठे कि 7 लोग थे और 4000 ब्रेड्स थे, जीसस ने सबको बांट लिया, सबने पेट भर के खाया तो भी ब्रेड बच गए। देखिए क्या मिरेकल है। जिन्हें लिए आपको पता है, जब आप कहीं जाते हैं प्रवचन वगैरह सुनने या कुछ करने, ज्यादातर लोग तो बैठते हैं, सुनते नहीं है, अपने फोन में लगे रहते हैं और कहीं लगे रहते हैं। जो थोड़ा वो सुनते हैं वो बिल्कुल वो भाव के साथ बैठे रहते हैं, अक्सर जो बोलता है वो सही होता होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन तो होता नहीं है, ये रिलीजियस प्रॉब्लम है। पर एक यंग लड़का आ गया था उस दिन, तो उसने पूछा पास्टर ने जो बोला कि समझ में आया, तो वो यंग लड़के ने हाथ उठाया, आई हैव टू से समथिंग। बोले इसमें मिरेकल कहां है, 4000 रोटी है और 7 लोग है तो खाएंगे, तो मिरेकल क्या है। तो पास्टर को लगा क्या गलती हो गई, ये उसको समझ में नहीं आया। तो साइड में एक लोगों ने कहा, आपने गलती से 4000 लोगों की जगह 4000 रोटी बोल दी थी। ओ माय गॉड, ओके। उस दिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, बड़े बड़े हर्ट किया, ईगो को तो हर्ट करता है। अगले दिन पास्टर साहब बड़ी तैयारी के साथ आए, चश्मा भी था, तैयारी के साथ उसी चीज को रिपीट किया, सुन लो कल मैंने जो मिरेकल के बारे में बताया था, 4000 फॉलोअर्स थे, 7 रोटियां थी, जीसस ने सबको बांट लिया, सबका पेट भर गया तो भी रोटी बच गई थी, एनी डाउट। वो यंग लड़का तब भी हाथ उठाया, क्या बोले, ये तो मैं भी कर सकता हूं। बोले कैसे, बोले कल की जो बचे हुए थे। देवियों सज्जनों, बात है कि हम किसी भी लेवल पर हों, अगर हमसे गलतियां होती हैं, इग्नोरेंट की मिस्टेक होना नेचुरल है, पर मिस्टेक को एक्सेप्ट करना नॉलेज के रास्ता खुल जाता है, आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। और जैसे ही आप अपने इग्नोरेंस को नॉलेज का वो कवर अप करने लगते हो, ये जिद्दी पकड़ के बैठ जाते हो कि मैं जो जानता हूं वही सही, बाकी दुनिया गलत है, फिर ऐसे ही होता है, फिर खुद को भी हट करता है, दूसरों को भी हम हट करते हैं। मंत्र की अगली व्याख्या हम अगले संडे को करेंगे डिटेल में। आपको दोबारा इस रिपब्लिक डे पर बहुत बहुत बधाई हो, और हम बाहर अब सेलिब्रेट करेंगे। ओम शांति।